ओम शांति। ड्रामा की हर सीन बहुत कल्याणकारी है। नुमा शाम के समय सूक्ष्म वतन की सैर करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और आज का इस समय का जो विषय है वो यही है, दिव्य बुद्धि द्वारा सूक्ष्म वतन की सैर करना। यूं तो हम करते भी होंगे, लेकिन आज विशेष स्पष्टीकरण हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी द्वारा होगा। यूं तो अनेक विशेषताएं हैं, हम सभी जानते हैं, प्रोफेशन से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ कि मेडिकल साइंस, एक तरफ मेडिकल साइंस और दूसरी तरफ मेडिटेशन, और उन्होंने पॉजिटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके किस तरह से किन्हीं बीमारियों को हम कम कर सकते हैं, किन को दूर कर सकते हैं, इस तरह के रिसर्चेस आप सभी जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस कैड जिसको कहते हैं, उसके यहाँ हर साल कुछ ग्रुप्स आते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनमें आपका विशेष योगदान होता है। ये तो है एक लौकिक लेवल कहो, जिसको स्पिरिचुअल के साथ कंबाइन किया है, लेकिन जो विशेष बात मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा के ज्ञान को आपने इतनी अच्छी तरह से समझा है और उसको इस तरह से स्पष्ट किया है साइंटिफिकली, जो कोई भी उसको समझ सकता है बहुत सिंपल तरीके से, और हम कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, किस तरह से हीलिंग करना हमारे हाथ में है। मैं समझती हूँ आप में से बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने सुना होगा, क्योंकि जब से आप बाबा के बने और इस तरह की आपने सेवाएं शुरू की, तब से लेकर आप लगभग भारत के, मुझे लगता है हर राज्य में तो गए होंगे, और विदेशों में भी जाके आपने इस तरह के टॉक्स दिए हैं, आपके पेपर्स मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं और होते भी रहते हैं, आपको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कई प्रकार के पुरस्कार भी मिले हुए हैं, और ऐसे भ्राता हमारे बीच में हैं, हम उनका इस भर्ती में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। मैं समय ज्यादा न लेते हुए आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने विषय को स्पष्ट करें।
ओम शांति। साधन साधन आधा घंटा योग करें। ओम शांति। सबसे पहले तो आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट, आज ट्रैफिक बहुत था रास्ते में, लेट हो गए। चलिए एक मिनट फिर बाबा की याद में बैठ जाते, मन बुद्धि को एकाग्र करके, आत्मा यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 8 7 एनर्जी का पुंज, शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं, एनर्जी उसमें जाती हुई महसूस करें, और फिर परमात्मा 7 एनर्जी का पावर हाउस, मैं आत्मा उसकी संतान, और उससे अपने कनेक्शन को जोड़ते हुए, संबंध को अनुभव करते हुए, पूरी एक सेल को आप, एक कोशिका को, 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, एक सेल को आप जागृत कर दे, है ना। चलिए एक मिनट, एकदम मन बुद्धि को एकाग्र कर दे, मोबाइल को साइलेंस मोड में डाल दें। दिव्य बुद्धि द्वारा सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना, या सूक्ष्म वतन की सैर कैसे करें, आज का विषय बहुत ही गूढ़ विषय है। हम सभी बाबा के नूर रतन हैं, बाबा की नैनों के नूर हैं। हम सभी इस सारे विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त आत्माएं। आधार मूर्त अर्थात हम आत्माएं पूरे विश्व की आधार मूर्त हैं, हमसे ही सारा विश्व चलता है। कल के मुरली भी सुनी ना, हम बच्चे कौन हैं? हम जहान के नूर हैं, मतलब जहान की रोशनी है। हम हैं तो जहान में रोशनी है, हम हमारी रोशनी भरपूर है तो सारा जहान रोशन हो जाता है। रोशन माना सातों ऊर्जाओं से भर जाता है, सतो प्रधान हो जाता है। रोशन होना माना आत्मा के सात एनर्जी है ना, आत्मा के पास सात ऊर्जाएं हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज है ना, वो सात ऊर्जाएं ही आत्मा की रोशनी है और इस ऊर्जाओं से ही सारा शरीर चलता है, सारा विश्व चलता है, सारी प्रकृति चलती है। जब और ये हम निमित्त आत्माएं, थोड़ी सी निमित्त आत्माएं जिसमें से मुख्य 108 है ना, पहले 8 उसके बाद 108 मतलब 100 और फिर 16,000 फिर 9,00,000 है ना। मुख्य आत्माएं जो है ये 9,00,000 16,108 आत्माएं ही रेस्पॉन्सिबल है। किस लिए? किस लिए? सारे विश्व की रोशनी देने के लिए। आधार मूर्त है ना, हमें देख करके सारा विश्व कॉपी करता है। हम उधार मूर्त है, हम आत्माएं हमारे पीछे पीछे एक एक के पीछे सीरीज है। सीरीज में ना अष्टरत्न आत्माएं पूरे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं के लिए जिम्मेवार है। 8 तो रतन हो गए, एक शिव बाबा है ना, 9 रतन, तो 800 करोड़ लगभग विश्व के जब विनाश होता है उसमें लगभग भारत सारे विश्व में 800 करोड़ आत्माएं होती है। अभी 760 करोड़ आत्माएं है ना, तो अभी 760 करोड़ आत्माएं लगभग पहुंची। एक्यूरेट फिगर नहीं है, हो सकता 770 करोड़ हो गई हो, 780 करोड़ भी हो गई, पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। सेंसस अभी अगले अभी 2021 में होगा ना, तब एक्यूरेट फिगर आएगी है ना कितनी हो गई है। तो लगभग 800 करोड़ 8 आत्माएं तो जो है वो सारे 800 करोड़ आत्माओं के लिए जिम्मेवार है, ठीक है, और 108 आत्माएं भी 800 करोड़ आत्माओं के लिए जिम्मेवार है, राइट। और बाकी 16,000 आत्माएं लगभग देखें अगर हम, तो 16,000 आत्माएं भी हमारे लगभग एक आत्मा लगभग 5,00,000 आत्माओं के लिए जिम्मेवार है ना, ठीक है। 16,000 आत्माएं भी कितनी, लगभग 5,00,000 आत्माओं, हम हिलते हैं अगर 16,000 भी समझो अपने आप को, तो हम मिलते हैं तो 16,000 5,00,000 आत्माएं हिल जाती हैं। हम जो कुछ करते हैं 5,00,000 आत्माएं फॉलो करती हैं। और 108 आत्माएं हैं, 108 समझो अपने आप को, तो लगभग कितनी, एक एक आत्मा के पीछे कितनी, लगभग 8 करोड़ आत्माएं रिस्पॉन्सिबल होती है ना, कम से कम 8 करोड़ आत्माएं एक आत्मा के पीछे है ना। 800 करोड़ 100 है ना, तो कितने 8 करोड़ हो गए ना, तो हमारे एक के पीछे 8 करोड़ आत्माएं है ना, राइट। तो हम कितने इंपॉर्टेंट आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं और उदाहरण मूर्त हैं। हमें सैंपल, हम ही वो सैंपल हैं, एग्जांपल हैं जिसको देख के लोग बदलते हैं। अगर मैं बदलता हूं तो मुझे देख के 8 मतलब कितने 8 करोड़ आत्माएं बदल जाते हैं, और असर सब पे पड़ता है, 800 के 800 करोड़ आत्माओं पे पड़ता है, राइट। तो इस तरह से हमने आपको समझने की आवश्यकता है। जो शिव बाबा जब हम ऐसी आत्माओं को ऊपर से पहचानता है ना, फिर वो ब्रह्मा के तन में आता है ना, और ब्रह्मा के तन में आके वो आते ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा क्या बन गए, बाप दादा। शिव बाबा है, अब देखो हम आपको सूक्ष्म वतन की जो बात करेंगे उसमें थोड़ा समझने की बहुत गहराई से आवश्यकता है। शिव बाबा जो है, शिव बाबा सात एनर्जी का पावर हाउस है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। शिव बाबा के पास बुद्धि है ना, सात गुणों से भरपूर बुद्धि है। उसके पास संस्कार है, कौन सा, रहम दिल का और विश्व कल्याण करने का, पतित को पावन बनाने का है ना, उपकार है ना, परोपकारी है वो ना? तो ये शिव बाबा का संस्कार है। और शिव बाबा के पास मन नहीं है, पर शिव बाबा पापा कहते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम, बच्चों के पास सूक्ष्म शरीर है ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास सूक्ष्म शरीर है और तुम बच्चों के पास एक सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है? ये आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां ना, बुद्धि मन संस्कार, उसमें से मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा? मन। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, राइट। और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीरधारी है। शिव बाबा ना सूक्ष्म शरीरधारी है ना स्थूल शरीरधारी है, राइट, है ना। तो शिव बाबा क्या करता है जब आते हैं, इसलिए आपको सूक्ष्म वतन को समझने के लिए बहुत जरूरी है, सूक्ष्म वतन क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है ना? और दिव्य बुद्धि जो बात कर रहे हैं, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र की बात कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं और कैसे हमें इसको यूज करके अपने आप को क्या करना है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनाना है ना, और अल्टीमेटली बीज रूप बनना है ना, अशरीरी बन करके कर्मातीत बन के बाबा के साथ वापस घर जाना है और फिर सूक्ष्म, फिर क्या करना है, सुख धाम में आना है ना? तो आज हम इसको बहुत गहरे समझ लेंगे। अगर आपको क्लियर हो गया तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा सूक्ष्म वतन में जाना, जैसे एकदम ऐसे है ना, यूं किया और पहुंच गए, है ना, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। हाँ, पर उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और सही विधि पता हो तो बहुत सहज है। अगर रास्ता ठीक क्लियर पता हो तो आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, कंफ्यूज हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो है, इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, ब्रह्मा बाबा क्या है? है ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है ना। ब्रह्मा बाबा जो है वो संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि है। ब्रह्मा बाबा क्या है? संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि है। शंकर क्या है? संपूर्ण पावन सत्वप्रधान मन है। और शंकर विष्णु क्या है? संपूर्ण पावन सत्वप्रधान संस्कार है, अर्थात वो संस्कार जिनमें विष का एक अणु भी नहीं है, जिस परिवृत्ति में विष का एक अणु भी, मतलब कोई विकार का अंश भी नहीं है, किसी भी तरह के पांचों विकार उनके बाल बच्चों का अंश भी नहीं है। हमें पहले जो बेहद की बुद्धि मिलती है, जैसे ब्रह्मा बाबा की हम एग्जाम्पल लेते हैं, दादा लेखराज उन्होंने 1932 से पुरुषार्थ शुरू किया कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, है ना, अपने मन बुद्धि संस्कार से बातें करते थे। आपने भी शायद बाबा की डायरी देखी होगी, देखिए डायरी देखिए, जिसमें बाबा ने लिखा है अपने अपने मन से बात कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से बात कर रहे हैं, है ना, है ना, पीरू वजीर और बच्चू बादशाह, है ना, बाबा उनसे बात करते थे, रोज बात करते थे बच्चू बादशाह, मतलब उससे बात करते थे, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, मन को पूछते थे, है ना, बुद्धि को बात करते थे, तुम मेरा ऐसे करती क्यों नहीं, अपना दरबार रोज लगाते थे, मन बुद्धि संस्कार पांचों कर्मेंद्रियां और आठों अंगों का दरबार लगाते थे, शरीर के आठों अंगों का दरबार लगाते थे, पूछते थे एक से कि दरबार में सब ठीक ठाक है, बुद्धि ठीक से कार्य कर रही, मन ठीक से कार्य कर रहा, संस्कार तो गड़बड़ नहीं कर रहे, आंखें ठीक कार्य कर रही, नाक मुख कान मुख ये त्वचा जो हमारी और शरीर के आठों अंग, उसको चेक करते थे, रोज चेक करते थे। ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, ऐसे दादी जो थी ना सत्तू की जो दूसरी बेटी थी ना, एक तो दादी की निर्मल शांता थी, एक दादी की उनकी दादी हमारे पास 2.5 साल रही, दूसरी दादी की जो बाबा की जो बेटी थी ना जो, वो हमारे पास 2.5 साल हमारे पास रही, हॉस्पिटल में एडमिट रही, नीचे ट्रॉमा सेंटर में, पुट्टो दादी कहते थे उसको, है ना, तो वो नीचे एडमिट, हम उनसे बहुत सारी बातें करते, कभी कभी हम टाइम होता था तो उनसे बैठते थे, बाबा की सारी बातें करते थे ना, बाबा सारी बातें हमको बता, एक्यूरेट सारी बातें बताती थी, कैसे कैसे बाबा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, है ना। तो वो जो है बाबा के अंदर, बाबा ने क्या किया, बाबा के अंदर जैसे पुरुषार्थ तो बाबा का पहले से चल रहा था, फिर बाबा उनके अंदर आए, शिव बाबा उनके अंदर अवतरण हुआ, और शिव बाबा ने आते ही उनको क्या दिखाया, पहले है? पहले क्या दिखाया, शिव बाबा ने उनके अंदर आ गए और शिव बाबा ने कहा अहम शिवोहम शिवोहम, है ना, निज स्वरूपम आनंद ज्ञान स्वरूपम निज शिवोहम शिवोहम, है ना, आनंद स्वरूपम शिवोहम, ऐसे मतलब उनको सारे जो सात बातें थे ना बाबा के, जो सात गुण है आत्मा के, वो बाबा ने बताए कि ना कैसे बच्चे मैं जो हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं पावर हाउस हूं सातों एनर्जी का, और वो जो है मैं जो तुम्हारे अंदर आया हूं। फिर बाबा को उन्होंने विनाश का साक्षात्कार कराया, फिर आने वाली दुनिया का साक्षात्कार कराया है ना। तो बाबा की बुद्धि में क्या भर दिया बाबा ने, शिव बाबा ने एक बेहर की बुद्धि दे दी है ना, कि तुम देह नहीं आत्मा हो। और फिर विष्णु का साक्षात्कार लास्ट में दिखाया, विष्णु चतुर्भुज तत्वम, फिर तत्वम है ना, तुम्हें ऐसा मैं ही तुम हूं, तुम्हें ऐसा बनना है राइट, तुम्हें ऐसी नई दुनिया बनानी है राइट। तो बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा की बुद्धि में शुरू से ही क्या डाल दिया, बेहद की बुद्धि बना दी उसकी, उसकी बुद्धि में बेहद का ज्ञान डाल दिया, ये दिव्य ज्ञान डाल दिया, जिसको मैं ABCD कह देता हूं ना, आत्मा बाबा तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ है, और संसार रूपी नाटक है जो भी, ये साक्षी से साक्षी होकर रहो, ये जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होना सबसे अच्छा, और फिर आने विनाश, ये दुनिया जिसको जिसमें तुम रहते हो सब विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है और तुम्हारा ये स्वरूप बनने वाला है, तुम्हें ये ऐसी दुनिया बनानी है। तो मन में लक्ष्य भर दिया, बुद्धि में ज्ञान डाल दिया और तुम्हें ये बनना है, तो मन में ये लक्ष्य दे दिया। बुद्धि रूपी आंख कहां लगा दी, अपने में लगा दी, परम धाम में लगा दी, परम धाम में मुझे याद करो, और मन रूपी आंख में लक्ष्य रख दिया कि मन रूपी आंख में तुम सुख धाम को देखते रहो, तुम्हें ये मिचनू बनना है, तुम्हें श्री कृष्ण बनना है, श्री कृष्ण से श्री नारायण बनना है, तुम्हें विष्णु बनना है राइट। तो ऐसे ही और ब्रह्मा बाबा ने एक्यूरेट पुरुषार्थ श्रीमत पर चल के, एक्यूरेट श्रीमत पर चल के पुरुषार्थ किया, छोटी बात भी, हालांकि ब्रह्मा बाबा के पास इतनी, शिव बाबा उसके साथ थे लगभग लगातार कंबाइंड थे, तो भी ब्रह्मा बाबा बच्चों को सिखाने के लिए संदेशी को भेजते थे, कभी गुलजार दादी को, गुलजार बहन कहते थे तब तो छोटी बच्ची थी, संतरी दादी को है ना, संदेशी दादी को, कभी हर छोटी से छोटी बात को पूछने के लिए बाबा ऊपर भेजते थे है ना, उसको जाओ संदेशी ले पूछ के आओ बाबा से, अंधे इसमें एक बार फागे में फंस गए तो बोला, छोटी छोटी बात भी बाबा पूछते थे सिखाने के लिए, कि बच्चे भी सीखे हर बात बाबा से पूछे, छोटी छोटी समस्या भी बाबा से पूछे, चाहे तो बाबा खुद बता सकते थे किंतु नहीं, ब्रह्मा बाबा ने नहीं बताया, बाबा से पूछ के बाबा ने फिर जैसा कहा वैसे किया। आज तक यज्ञ में वही अपनी सिस्टम है ना। तो बाबा ने 100% श्रीमत, वो जो भेद की बुद्धि में जिसे दिव्य बुद्धि कहते हैं, जो बाबा दिव्य बुद्धि कौन सी है, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र क्या है, दिव्य बुद्धि क्या है, दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान भरा हो, ये मुरली भरी हो, बाबा और बाबा की याद, बाबा की मुरली भरी हुई हो, वो है बेहद की बुद्धि या दिव्य बुद्धि। तो बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको क्या दी, बेहद की बुद्धि, माँ के रूप में गिफ्ट है ये, हमारी हमारा जन्म हुआ ब्राह्मण जन्म जैसे हुआ, तो जैसे ब्राह्मण जन्म की हमारी जन्मदिन की गिफ्ट क्या होती है, एक माँ ने गिफ्ट दी, एक बाप ने गिफ्ट दी है, माँ ने कौन सी गिफ्ट दी, दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट दी, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट दी, लिफ्ट लिफ्ट होती ना, अभी लिफ्ट यहां से आती है ना ऊपर आते बटन दबाओ ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट दी। और बाप के रूप में क्या दिया, शिव बाबा ने बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिसे दिव्य नेत्र भी कहते हैं राइट। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट तीनों लोगों को तक ले जाने वाली है, श्रेष्ठ संकल्प रूपी बटन दबाओ और कहां पहुंच जाओ, जब चाहे सूक्ष्म वेतन में पहुंचाओ, जब चाहे परम धाम में पहुंच जाओ, जब चाहे वापस सूक्ष्म वेतन में, जब चाहे इसमें आ जाओ। और जो तीसरा नेत्र दिया, दिव्य नेत्र दिया, वो दिखाने वाला है, यहां बैठे बैठे आप, यहां बैठे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं बैठे बैठे आप सूक्ष्म वेतन देख लो, यहां बैठे बैठे परम धाम देख लो, यहां बैठे बैठे आप क्या करो सुख धाम में चले जाओ, अपने महलों में चले जाओ, पहले जन्म में कैसे हैं, श्री कृष्ण खेल रहे हैं, मेरे महल में कौन कौन से हीरे जवाहरात लगे हुए हैं ना, हम क्या करते हैं वहां पर, दूसरा जन्म कैसा है, तीसरे जन्म में क्या कर रहे हैं, चौथे जन्म में क्या कर रहे हैं, पांचवें जन्म में क्या कर रहे हैं, आठवें जन्म में, नौवें दसवें जन्म में हम क्या कर रहे हैं, एकदम एक एक चीज स्पष्ट देख सकते हो ना। उसमें क्या है, निश्चय का पर्दा और स्मृति का, स्मृति का मणका है ना, निश्चय का पर्दा, पर्दे भी दिखाई देते हैं चीज, और स्मृति का स्विच है ना, स्मृति का स्मृति जागृत करो और देख लो, पहले जन्म की स्मृति, दूसरे जन्म की स्मृति। सिर्फ पर्दा क्या होना चाहिए, निश्चय में संशय नहीं होना चाहिए। अगर पर्दा फटा होगा तो क्या होगा, दिखाई देगा निश्चय? पर्दा गंदा होगा तो क्या दिखाई देगा क्या? पर निश्चय रूपी पर्दा स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, तो आपका बटन दबाने से स्मृति रूपी स्वच्छ स्विच दबाओ, मणका दबाने से एकदम दिखाई देगा, राइट? तो दोनों चीजें आवश्यक है ना। तो ये जो है हम इसकी समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे इसको यूज किया। ब्रह्मा बाबा ने दिन रात लगन लगा के, है ना, बाबा को शुरू से सबने फरिश्ते के रूप में देखा ना किसी ने। हम तो देखते हैं, दादियों से मिलते हैं, दादियों से बातें करते थे, तो दादियां बताती थी, मैं दादी बड़ी दादी के साथ तो बहुत मेरा क्लोज, हम बहुत क्लोज बैठते थे और दादी सारी बातें शेयर करती थी। और फिर मनोहर दादी थी, निर्मल शांता दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, है ना, उनसे तो हम बहुत बहुत मतलब इनके साथ बैठते थे। और अपनी शांतामणि दादी, है ना, और भी दादियां थी जिससे हम बहुत ही क्लोजली बैठ के बातें करते, डिस्कस करते थे। डिस्कस किया वो अपने अनुभव, हम नहीं पूछते थे, दादियां अनुभव सुनाती थी। लच्छू दादी बाबा के अंग संग रही, उनसे भी बातचीत होती थी, बहुत बहुत सारी बातें बताती थी दादी हमको। तो ये जो है बाबा ने इतना पुरुषार्थ के 33 साल में दिन रात लगन लगा के बाबा की आज्ञाकारी बन करके, है ना, वफादार सपूत बच्चा बन करके, हर श्रीमत को पालन करके बाबा ने अपनी बुद्धि को संपूर्ण पावन शतप्रधान बनाया, मन को संपूर्ण पावन शतप्रधान बनाया और संस्कारों को संपूर्ण पावन शतप्रधान बनाया। और तीनों चीजों को संपूर्ण, मतलब ये जो उनकी जो सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, ये तीन सूक्ष्म शक्तियों से बना हमारा सूक्ष्म शरीर। बुद्धि यहीं पर ही है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और फिर संस्कार, जैसे उसमें जो आदतें हैं, संस्कार भी एक्चुअली मन का ही एक एस्पेक्ट है, मन का ही एक पार्ट है। मन में चार बातें होती हैं, बुद्धि में भी चार बातें, हम इसको समझ लेते हैं गहराई से, कैसे हम सूक्ष्म वतनवासी हमको बनना है। तब कल की मुरली से थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पर जाएंगे, है ना, वो एक ट्रैक अलग है। कल जो मुरली सुनी वो तो आपने सुनी है, अच्छे से अनुभव भी की होगी, प्रैक्टिस भी की होगी। हम आपको एक बहुत इसके सूक्ष्म रहस्य में ले जाते हैं। बुद्धि में चार एस्पेक्ट हैं, मन के भी चार एस्पेक्ट हैं, जब हम समझ जाएंगे तो हम प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। बुद्धि के चार एस्पेक्ट है, पहली जो एस्पेक्ट है वो है चेतना, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं और दिल भी कहते हैं, ठीक है, दिल, हार्ट ऑफ द सोल। एक तो ये दिल ही वाला है, ये तो फिजिकल दिल है, एक हमारा आत्मा का दिल है, इसे हम चेतना भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस कॉन्शियंस भी कहते हैं। और दूसरी जो है, दिल में जो क्या होता है, पहला दिल है, दूसरा विवेक है, पार्ट नहीं है, एस्पेक्ट है, है ना, और तीसरा जो है वो निर्णय शक्ति है, जिसको हम आम भाषा में बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, दिल, विवेक, निर्णय शक्ति और फिर चित्त, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और इसमें टोटल बात है दिल की बात है, दिल में आपके क्या है। अगर दिल में आपके देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव क्या है, पांच विकार, जब देहभान जैसे ही आता है पांच विकार शुरू होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार देह की नेचर है। इसे पानी की नेचर क्या, ठंडक, आग की नेचर गर्मी, देह की नेचर ही काम विकार, देह की दृष्टि को ही काम विकार कहते हैं, है ना। क्रोध उसकी एक रिफ्लेक्शन है, उससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है, फिर क्रोध आता है। लोभ चीजें संग्रह करने की बात है, मोह इंसानों से होता है, लोभ चीजों का होता है, नाम मान शान का होता है, और फिर अहंकार, जो चीज इकट्ठी की उसका अहंकार हो जाता है ना। तो पांच विकार इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं, क्योंकि देहभान से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उससे पांच विकार, ये पांच विकार देहभान की नेचर है। और फिर देहभान के संस्कार क्या है, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, मतलब देहभान वाले के अंदर ये दिखाई देगा आपको, देहभान वाला आलसी होगा, अलबेलापन होगा, है ना, उसमें दूसरों के दोष दिखाई देंगे, बदला लेने की भावना होगी, शक करेगा, अनुमान लगाएगा, चिंता भय होगा उसके अंदर, है ना, जल्दीबाजी होगी, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर होगा, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष होगा। ये निशानी है देहभान की, भले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके अंदर नहीं है, अगर आलस है, अलबेलापन है, दूसरे में दोष निकालने की आदत है, दूसरे के दोष दिखाई देते हैं, बदला लेने की भावना रखते हो, अंदर शक है, अनुमान है, चिंता है, भय है, जल्दीबाजी रखते हो, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहते हो, हमेशा प्रेशर में रहते हो, और ईर्ष्या द्वेष है, तो आपके अंदर अभी भी देहभान है। ठीक है, मोटा रूप विकारों का है किंतु छोटा रूप ही है। तो ये हमारी बुद्धि में, अगर दिल में अगर ये चीज है, देहभान है, तो अपने आप ही देखे संबंध दिल में बसे हुए, देखे पदार्थ बसे हुए और देखे स्वभाव बसे हुए। स्वभाव दिल में होते हैं, बुद्धि में होते हैं, और संस्कार आत्मा में होते, मन में होते हैं। ठीक है, संस्कार कहाँ होते, मन में होते हैं। तो अगर दिल में ये, अगर हमारे दिल में ये है, देहभान है, जो कि असत्य है, तो हमारा विवेक कंफ्यूज हो जाता है। तो विवेक कंफ्यूज हो जाता है। विवेक क्या है? विवेक जो, अगर दिल में छह एनर्जी होती है, ज्ञान मन सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, इसके आधार पर विवेक कार्य करता है। किसके आधार पर कार्य करता है विवेक? सत्य को परखने शक्ति, सत्य ज्ञान, सत्य की समझ के आधार पर कार्य करती है। अगर मन बुद्धि पवित्र है, उसके मतलब पवित्रता है दिल में, तो उसके आधार पर हमारा सत्य को परखने शक्ति काम करती है। अगर शांति है, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद है, तो ही सत्य को परखने शक्ति काम करती है, इसको विवेक कहते हैं। और जब सत्य को परखने शक्ति काम करती है, तो फिर हमारी क्या काम करती है? निर्णय शक्ति काम करती है। फिर हम सत्य को परख लिया, एक सेकंड में निर्णय हो जाता है, एक सेकंड से भी कम समय में निर्णय हो जाता है। और जब एक सेकंड से भी कम समय में निर्णय हो जाता है, तो विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। विस्तार क्या है? देह और देह की दुनिया विस्तार है, राइट? मतलब हमारी मन बुद्धि देह और देह की दुनिया में फंसी रहती है, ये विस्तार है, ये बहुत बड़ा झाड़ है, झाड़ के समान। और मन और बुद्धि अगर पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तो सूक्ष्म वतन जो है पवित्र दुनिया है। सूक्ष्म वतन कि में हम मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं, ये सार है। तो इसको बोलते हैं विस्तार को सार में लाने की शक्ति। अपनी मन बुद्धि को इस दुनिया से हटा करके कहां ले जाते हैं हम? अपने सार रूप में, माना हम अपने सूक्ष्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप में ले जाते हैं, और वहां बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। ये विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। अगर विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, तो मन बुद्धि को समेट के हम बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बिंदी से, ये समेटने की शक्ति है। हमने मन बुद्धि को समेट लिया दुनिया से, देह और देह की दुनिया से, बिंदी बन गए, और सूक्ष्म मतन से भी समेट लिया, और बिंदी बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए। करंट आने लगती है। करंट आने का मतलब क्या है? करंट आने का मतलब क्या है? सत्य की समझ आने लगती है। प्रैक्टिकली माना अब लगता है कि मैं आत्मा बिंदु हूं, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, मेरे पत्नी भी बिंदु है, पति भी बिंदु, बच्चा भी बिंदु, ये सब बिंदु है। सत्य क्या है? बिंदु है ना, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, बिंदु 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 है ना। सत्य की समझ आनी शुरू हो गई है ना, जो हुआ उसको बिंदु, मेरा बाप बिंदु है, मेरे सर्व संबंध बिंदु के साथ है, जो हुआ बिंदु, जो हो रहा है वो बिंदु, और जो होने वाला उसको भी बिंदु। संकल्प बंद, करंट आने लगी। पवित्रता, पवित्रता क्या है? क्या है? मैं भी बिंदु, हम सब बिंदु, हमारा बाप बिंदु। शांति क्या है? जो बीत गया बिंदु, वर्तमान बिंदु और भविष्य बिंदु है ना। प्रेम क्या है? हम सब बिंदु, आपस में भाई भाई, एक बाप के बच्चे। अतीन्द्रिय सुख क्या है? ये भी बिंदु है। आनंद क्या है? वो भी बिंदु है। सत्य को प्रण शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। सत्य परखना क्या है हमको? कि हम सब बिंदु है, ये भी बिंदु है नहीं? ये धार निर्णय करने की शक्ति क्या है? ये भी बिंदु है ना। बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति क्या है? विस्तार को, वो भी बिंदु है। समेटने की शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। ठीक है, जब ऐसी करंट आने लगती है, तो अब सहन करना सहज हो जाता है। बाप से करंट आ रही है ना, अब सहन करना, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, शरीर में बीमारी आ रही है, हार्ट अटैक आ गया, पैर खराब हो गए, कमर खराब हो गई, एसिडिटी बन गई, क्या होता है? सहन करना सहज हो गया, क्योंकि बाप साथ हो गया ना, सहन करना सामान्य, फिर संभाल लेते हैं। फिर और भी प्रॉब्लम आने को, हमने तरसे जितना बहुत पाप किए हैं, ये माउंट आबू जितना बड़ा पहाड़ है ना, इतने बड़े पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कम से कम हर एक ने। और बाबा का बनने के बाद कितने पाप किए हैं, वो तो इस बात ही मत पूछो, सौ गुना का हिसाब है ना। बाबा का, बाबा को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है ना। अब बाबा को कितनी बार भूलते हैं हम, तो कितने पाप किए हैं, सुरेंद्र भाई कितने पाप किए, 63 जन्म के 62 जन्म के पाप एक तरफ, और बाबा के बनने के बाद कितने पाप हो गए, क्योंकि बाबा को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है ना। तो ये जो हमने कितना पाप हो गया, तो मैं देखता हूं कभी सोचता कितना पाप है, बहुत पाप किए, वो तो हिसाब किताब सारे सामने आएंगे ना, तो सामना करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है, और अंत तक आती रहे, अंत तक माना जिस दिन विनाश होगा, जिस घड़ी विनाश होगा उस समय भी प्रॉब्लम आ रही होंगी, और जितना आगे बढ़ते जाओ उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती जाएंगी, राइट। तो फिर सामना करना भी सहज हो जाए, और भी प्रॉब्लम आ जाओ, पहलवान क्या करता है, आ जाओ तो इसको हरा दिया, इसको हरा दिया, चलो तुम भी आ जाओ, तुमको भी हरा लेते हैं ना, क्योंकि बाप साथ है ना, हम बिंदी बन के बिंदी बाप से कम माइंड है, तो हम सहन करना सहज है, सामना करना सहज है, समाना सहज है, और सहयोग करना सहज है। और जब सातों एनर्जी ये आठों शक्तियां आ गई ना, अब सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया, ज्ञान पवित्रता शांति। ये तो क्या, कई लोगों में ज्ञान बहुत है, सुनाते बहुत अच्छा है, पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता का अर्थ क्या है, मैं तो ज्ञान तो बताया, ज्ञान में था ABCD ना, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा है ना, तो ये तो इसके ज्ञान का मनन चिंतन जितना करते जाते, मनन चिंतन करते जाते पवित्रता आती जाती। पवित्रता माना अपना सत्य स्वरूप सामने आता रहता। सत्य स्वरूप हमारा क्या है, सत्य स्वरूप हमारा परम धाम वाला स्वरूप है और आदि देवता स्वरूप है। द्वापर वाला हमारा सत्य स्वरूप नहीं है, वो तो असत्य स्वरूप है, उसमें विकारी बन गए, पतित बन गए है ना, वो हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि पावन सत्व प्रधान देवी देवता स्वरूप, ये हमारा सत्य स्वरूप है। जितना हम इसको घूरते जाएंगे, किसको, मुरली को, जैसे आज की मुरली थी है ना, हंस बुद्धि कैसे बनेंगे है ना तो कैसे उसको घूरते जाओ, एक एक लाइन को, योग क्या है, बाबा की मुरली की एक एक लाइन को अनुभव करते जाओ, जितना अनुभव करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा तो सुबह 2 बजे से लिख लेते थे, फिर एक लाइन को सारा दिन अनुभव करते रहते थे, उसी में खोए रहते थे, सारा दिन उसी मस्ती में रहते थे, रूहानी मस्ती में। कोई बच्चा आया तो बच्चे को भी बस बहुत प्यार से उससे बात कर दी, बाकी बाबा इतने मस्त थे, बाबा से साथ दादियां बताती थी, बाबा को कभी कोई बात की फिक्र नहीं होती थी। 380 बच्चे थे, बाबा को कभी किसी बात की फिक्र नहीं होती थी, किसी की भी, ना खाने की ना पीने को, बीमार हुआ यूं ही गए, हाथ फेर दिया, ठीक हो गया, ऐसे किया, बच्चे पेट में दर्द है, कहां पेट में दर्द, कोई पेट में दर्द नहीं है, चलो ठीक हो, इतना ही बोलने से ठीक हो गया है ना। बच्चे ऐसा हो रहा है, कहां पर है ही नहीं, वो ठीक हो जाता था ना। बच्चे इसको चलो थोड़ा शहद में ना, दूध में थोड़ा शहद डाल के दे दो आधा चम्मच, पानी में थोड़ा शहद डाल के दे दो, चलो फिर मक्खन में थोड़ी सी डाल के दे दो, दूसरी ना वो होता था क्या बोलते थे, कुछ देते थे बाबा, तो वो डाल के दे, चलो मक्खन के इसके अंदर थोड़ा डाल के दे दिया, चलो जी खा लो बच्चे, ये दवाई है तुम्हारी, दवाई 14 साल तो बाबा कोई दवाई दी नहीं है ना, 14 साल किसी बच्चे ने कोई दवाई नहीं खाई, कोई डॉक्टर घर में आया नहीं, 380 बच्चे थे और कोई डॉक्टर घर में नहीं आया है ना, वंडरफुल। आज सभी दवाई खाते हो अपने, कोई ऐसा भी दवाई नहीं खाता है, सभी गोलियां खाते हैं ना, एक दो बहनों को छोड़ के है ना चलो 3, 4, 5, 10 होंगे ना, है ना। तो मतलब आज सभी दवाइयों पर रहते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकली बाबा करते थे ना। तो बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि को और मन को, बुद्धि बताया ना, बुद्धि कैसे बनाई, ये ज्ञान जो है ना बाबा की यही आशीर्वाद है, यही कृपा है। तो जितना ज्ञान को घूटते जाओगे उतना बाप के समीप होते जाते हैं, ये देहिमानी स्थिति है, और फिर से हमारी आत्मानी स्थिति बनती जाती है। आत्मानी स्थिति में ना पवित्रता आती जाती है, अपना प्रैक्टिकल स्वरूप फील होने लगता है, अनादि ज्योति स्मृति जागृत होने लगती है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की, आदि देवता स्वरूप की, और फिर दूसरों को भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। हमारा तीसरा नेत्र हमारा बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, शरीर के अंदर हमारा हमें दिखाई देने लगता है कि ये आत्मा है। आत्मा ऐसी नहीं कि छोटा बिंदु चमक रहा है, वो तो इतना अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है, उसको आंखें देख ही नहीं सकती, चमड़े की आंखें ना। आप ये नहीं कि सितारा चमक रहा है, ऐसा चमकता नहीं है सितारा, चमकता क्या, वो बहुत ही अति सूक्ष्म है। रियल में ऐसा फील होगा कि हाँ ये सामने वाला ना, ऐसे देहभान दिखाई नहीं देगा, देह दिखाई नहीं देगी, ये मेल फीमेल दिखाई नहीं देता है ना। उसका एक स्वरूप ही बदल जाता, अपना भी स्वरूप दूसरे का भी स्वरूप, ये देखते ही थे, और फिर देवता स्वरूप दिखाई देने लगता है, लाइट का ताज, रतनजड़ी ताज में दिखाई देंगे, सर्वगुण संपन्न 16 सबके गुण दिखाई देने लग जाते हैं, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, ये दिखाई देने लग जाते हैं, और उसमें भी फुल कला, 16 कला माने 100% संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म दिखाई देने लगता है। और लाइट तो ऐसा हमको दिखाई देना, लाइट का ताज लोगों को दिखाई देना लग जाता है अपने आप ही, अपने अपने घर वालों का, अपने अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, भाई बहनों का भी, ज्ञान में नहीं चलते उनका भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। मैंने एक बात कई बार क्लास में बोलता हूं, हमारे जितने भी घर वाले हैं, चाहे वो हमारे ज्ञान में चलते नहीं चलते, वो सबके सब देवी देवता कुल की आत्मा है। आपका जन्म जिनके घर में हुआ है वो देवी देवता कुल की, भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, आपके बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो भी वो देवी देवता कुल की आत्मा है। जितना ज्ञान आपको आता है उतना आपसे भी थोड़ा ज्यादा ही उनको आता है। वो सिर्फ आपको चेक करते हैं, देखते रहते हैं, मम्मी बाबा तुम्हारा ये वाला बोलता है, गुस्सा करने को बोलता है, आंख दिखाने को बोलता है, तो बस वो पढ़ लेते हैं सब कुछ, है ना, पढ़ के फिर देखते मेरी माँ क्या करती है ना, मेरा बाप क्या करता है, वो चेक करते रहते हैं तुमको, है ना, वो आ जाएंगे, तुमसे भी फास्ट जाएंगे। पता है आपको, शिवानी बहन जो है, पहले आशा बहन की वो थी ना सेक्रेटरी थी, आज वो सबसे आगे चली गई ना, नहीं गई आगे, सबसे आगे चली गई ना, तो कौन कब आगे चला जाएगा, आपका आपसे छोटा बच्चा है ना, वो सबसे आगे चला जाएगा, है ना, जो आज बिल्कुल एकदम से कुछ भी समझता नहीं है, उल्टा ही बोलता है, हमेशा उल्टा बोलता है, कल आपसे आगे चला जाएगा। हमारे पास कितने दिल वाले ऐसे हैं, उनके युगल ज्ञान में चलती थी 10 साल से 15 साल से, पति कभी ज्ञान में नहीं चलता था, वो नीचे खड़ा रहता था, तुम गता मुरली सुन के आ जाओ, वो नीचे खड़ा रहे, कभी सेंटर में नहीं गया, 15 साल ऐसे किया। ऐसे बहुत सारे दिल वाले हैं, और जब उसको हार्ट अटैक आया, उसकी आर्टरी बंद हो गई, फिर एंजियोप्लास्टी कराई, वो भी फेल हो गई, अब मरता क्या ना करता, पति ने कहा चलो अभी तुम्हारी एंजियोप्लास्टी फेल हो गई, चलो अभी वहां चलो माउंट आबू, फिर माउंट आबू आ गए, तो माउंट आबू उनकी यहां पर आके वो बीमारी ठीक हुई, ब्लॉकेज खुल गया, हार्ट की पंपिंग पावर ठीक हो गई, अब पत्नी तो पीछे रह गई, वो रॉकेट वो उड़ गया, है ना, पत्नी भी चली रही है ना, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान में तुमसे कोई 15 साल से 20 साल से चल रहा, नहीं, तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, तो अपने इस ज्ञान का मनन जिन्हें पवित्रता को बढ़ाया, शांति को बढ़ाया, शांति माना पास का चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, मेरा बाप ऐसा सोचता है, जितनी पवित्रता आती जाती उतना बाप से हम कंबाइंड होते जाते हैं, पवित्रता आएगी तो हम असोचता बाप से कंबाइंड, फिर असोचता बाप यहां कंबाइंड हो जाता है, फिर असोचता बाप से कंबाइंड होकर सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सैर करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, सोते हैं, असोचता बाप से कंबाइंड होकर, तो फिर क्या, पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, 90% विचार आने बंद हो जाते हैं, इसको शांति कहते हैं, मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट, इसको शांति कहते हैं। तो शांति बनानी पड़ती है, यानी कि मुरली सुन ली शांति बन गई, शांति ऊपर से आ गई, पवित्रता ऊपर से नहीं आती है, बनानी पड़ती है, बाबा के संग से बनेगी, आएगी बाबा से, जितना मुरली को बार बार रिवाइज करते जाओगे, चिंतन करते मान गहराई में जाओगे, मंथन करोगे माना, और बाबा से ऐसे बाबा से जिससे लगन लग जाएगी, तो जिससे बाबा आपको टच करेगा, बच्चे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, सिमरण माना कार्य में लगाओगे, जो मक्खन निकला कार्य करते समय उसको कार्य में लगाओगे प्रैक्टिकली, उतना पवित्रता आती जाएगी, राइट, पवित्रता आएगी तो शांति आती, पास की बातें बानी बंद हो जाएंगी, जैसे अभी पास की बात तंग करती है ना, पास की बातें आएंगी नहीं, बुद्धि में आएंगी नहीं, और भविष्य की चिंता होगी नहीं, तो इसे शांति के, शांति आ गई, जब बाप के संग रहने लगते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है बाबा सबको देखो कैसे कितना प्यार से पालना कर रहा है, आतंकवादी को भी पालना कर रहा है, चोर को भी पालना कर रहा है, डाकू को भी पालना कर रहा है, सब कुछ दे रहा है उसको, तो मेरा बाबा कैसा है और मैं क्या कर रहा हूं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, बाप के समान हर आत्मा को हमें दिखाई देगा, इनको हमें सब कुछ क्या करना है, बिना किसी शर्त के उसके हर पार्ट को देखते हुए उसे स्वीकार करना है। तो ये क्या, जितना पवित्रता आई, शांति आई, इसको बोलते रूहानी प्यार, रूहानी प्यार आया, अब क्या हो गई, ये हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जा रही है, आत्मिक स्थिति बढ़ती जा, फिर उसके बाद हमारा अतीन्द्रिय सुख, जब ऐसा सबको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि क्या होगा, शुद्ध हो गया, मन बुद्धि शुद्ध हो गया, अब बुद्धि रूपी हमारा नेत्र, बुद्धि रूपी हमारी जो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है ना, वो उसमें हमने क्या डाला, श्रीमत रूपी पेट्रोल डाल दिया, इसमें मनमत परमत नहीं, हम लोग एक गलती करते हैं, मनमत परमत बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अब कोई तो हमें बताता है ये ऐसे करके बैठो, मुद्रा लगा के बैठो, हमारे काफी सारे 10-25% तो ऐसे भाई बैठते हैं, भाई बहन ऐसे ही बैठ के योग करते हैं, अब मुझे बताओ हमारे चलते फिरते उठते बैठते, परसों था मुरली में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते है ना, गाड़ी चलाते, क्या करना है? अगर ऐसे बैठ के आप याद करोगे तो क्या करोगे मुझे बता? खाते हुए ऐसे खाओगे क्या? गाड़ी ऐसे चलाओगे क्या? मतलब जब आपको ऐसे है तो याद है, जब ऐसे नहीं है तो याद नहीं है, नहीं? क्या ख्याल है? बाबा ने कौन सी मुरली बताया बच्चे ऐसे करके बैठो? बताया किसी मुरली में? तो मुद्र लगा के बैठना चाहिए, ऐसे करके बैठो, कोई ऐसे करके बैठता है, कोई ऐसे करके बैठता है, मतलब इसके बगैर तुम्हारा योग लगता नहीं है, इसके बगैर तुमको ज्ञान समझ में नहीं आता है। ये उंगली की बात है क्या? उंगली से आएगा ज्ञान क्या? ये सर्कल बनाने से आएगा क्या ज्ञान? इसमें जाएगा ना वापस, इसमें से ज्ञान घूम के अंदर जाएगा ऐसे, है ना? है ना? ऐसे जाएगा क्या? तो ये बाबा ये मनमत मिक्स कर दी ना आपने, या परमत किसी और ने बताया तुम ऐसे कर लो। कोई लोग प्राणायाम करते हैं क्यों? क्योंकि नाक बंद रहती है। कोई अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं। तो बाबा ने बताया क्या? तुम्हारी सांस की तकलीफ हुई कपाल भाती करो, तुम्हारा जुकाम रहता है कपाल भाती कर लो, बताया क्या? तो फिर क्यों करते? तो मनमत परमत ये परमत है ना, है ना? बाबा तुम्हारा डॉक्टर कौन है? हम क्या कहते हैं? माता पिता, मात पिता, टीचर सतगुरु, बंधु सखा, साजन सर्जन और बच्चा, मुख्य नौ संबंध बाप के साथ अनुभव होना चाहिए। ये परमत डाल देते हैं, मनमत डाल देते हैं कि बाबा ठीक तो रहना ना, डॉक्टर ने बताया ना, डॉक्टर को ना मेरा, बाबा ने बताया कि बच्चा उस डॉक्टर के पास जाओ, बताया क्या? तो अगर मुझे कोई कहे तुम ये चीज अंडा खा लो तुम ठीक हो जाओगे, तो मैं खाऊंगा क्या? मैं मरना पसंद करूंगा, शरीर छोड़ना पसंद करूंगा, अंडा नहीं खाऊंगा। कोई कहे मुझे लहसुन खा लो तुम ठीक हो जाओगे, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैं शरीर छोड़ना अच्छा है, लहसुन खाना अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है? तो ऐसे दृढ़ता अंदर होनी चाहिए ना, स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना। मैं थोड़े से अपने शरीर को ठीक करने के लिए मैं धरना अपनी जो धारणा खत्म कर दूं क्या? ये परमत और मनमत खत्म करनी है। अगर दिव्य बुद्धि रूपी ऊपर दिव्य बुद्धि आएगी नहीं, सूक्ष्म मतलब लिफ्ट है ना, लिफ्ट में आप बताया ना कचड़ा होगा तो क्या होगा? आप बटन दबाते रहो, संकल्प बटन, चलो सूक्ष्म बटन, चलो सूक्ष्म बटन, ऊपर जाएगी क्या? ना ऊपर जाएगी ना बीच में लटक जाएगी, अंधेरे में गर्मी अलग लगती। एक दिन फंस गया था हमारे लिफ्ट में ना, तो अंधेरा, पंखा भी नहीं चले, लाइट भी नहीं और सांस भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो 10 मिनट बसा फंसा रहा, तब मेरे को याद आई दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट अगर फंस गई ना ऊपर ना नीचे, है ना, बीच में लटके रहो, ना नीचे धरती पे पैर ना ऊपर ऊपर पहुंचे, है ना, तो गड़बड़ हुई नहीं, सांस भी आना मुश्किल हो जाता है, लोगों को सिर में दर्द हो जाता है। कई लोग योग लगाते हैं ना, सूक्ष्म वितर में पहुंचते ही नहीं, वो विजुलाइज करते रहते हैं, एक अपना ही सूक्ष्म वतन बनाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, जाके बाबा बना लेते हैं, है ना। वो थोड़ी देर बैठता है, वो बाबा टिकता है, बाबा से ऐसे ऐसे कराते हैं, बाबा फिर उड़ जाता है, क्योंकि रियल बाबा तो होता नहीं है, तो फिर लटकते ही रहते हैं ना, फिर बार बार उसी सीन को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं ना, ये क्या है? मनमत परमत है ना। बाबा ने कब कहा विजुलाइज करो? बाबा ने कब कहा तुम इमेजिन करो? ये तो विजुलाइज इमेजिन तो वो लोग करते हैं जिनके पास, जिनको ना बाप का ज्ञान है ना परमात्मा ज्ञान, ना परमात्मा ज्ञान है ना आत्मा का ज्ञान है, ना उनको सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान है, ना ड्रामा का ज्ञान है। वो लोग ये तो उन्होंने वेस्टर्न बुक्स में लिखा हुआ है, इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन, क्रिएटिव विजुलाइजेशन। बाबा ने तो कहा बच्चे रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। बाबा के एक एक महावाक्य को रिवाइज करो और रियलाइज माना एक एक चीज को अनुभव करो, एक एक लाइन को अनुभव करो, है ना, बाबा के एक महावाक्य को अनुभव करो। यही तो राजयोग है ना, इसी से पवित्रता, इसी से शांति, इसी से रूहानी प्रेम आएगा, अतीन्द्रिय सुख, है ना। अतीन्द्रिय सुख माना सूक्ष्म वतन में जाना, मतलब अब जो है बाबा ने क्या किया था, ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि को पावन सतोपदम बनाया, मन को पावन सतोपदम बनाया, शुरू में बना दिया क्योंकि बाबा की प्रैक्टिस तो पहले से चल रही थी। तो बाबा सूक्ष्म वतन माना, तो बाबा ने क्या किया, जब आज्ञाकारी बना बशी बाबा, ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बना। आज्ञाकारी बच्चे कहां रहते हैं बताओ? कहां रहते हैं? माता पिता के दिल में रहते हैं। कहां रहते हैं? आज्ञाकारी सपूत बच्चे मां बाप के दिल में रहते हैं। तो शिव बाबा का दिल कौन सा है बताओ? शिव बाबा का दिल तख्त क्या है? शिव बाबा का दिल तख्त कौन सा है? शिव बाबा का दिल तख्त है, शिव बाबा के पास क्या चीज है? शिव बाबा है ज्ञान का पावर हाउस, पवित्रता का पावर हाउस, शांति का पावर हाउस, रूहानी प्रेम का पावर हाउस, अतीन्द्रिय सुख का पावर हाउस, आनंद का पावर हाउस, सर्वशक्तियों का पावर हाउस। तो बाबा जो है सातवें एनर्जी का पावर हाउस है, तो ये बाबा के दिल में भरा हुआ है। जैसे आत्मा के दिल क्या है, आत्मा के दिल में क्या भरा हुआ है, आत्मा के दिल में ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद। और इन सातों के, इन छह के मिश्रण से, छह के अनुभव से आधार पर विवेक माने सत्य को प्रकट शक्ति बनती है। सत्य को प्रकट शक्ति एक्यूरेट तब होती है जब ये आनंद का अनुभव हो गया। आनंद माना आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार एकदम स्वतंत्र महसूस करे, परमात्मा की गोद का अनुभव करे, देह और देह की दुनिया बिल्कुल भूल जाए। अत्यंत सुख माना संतुष्टता, एकदम पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, है ना, बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूं, राइट। ये स्थिति और सर्व प्राप्ति हो गई, संतुष्टता, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो पवित्र बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि को और मन को पवित्र सत्व प्रधान बना के, और बाबा सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन क्या, शिव बाबा की दिल, राइट। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने साकार शरीर छोड़ दिया, है ना, और कहां जाके बैठ गया, मन बुद्धि से कहां जाके बैठ गया, मन बुद्धि संस्कार से शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया, ठीक है। शिव ब्रह्मा बाबा ने निरंतर दिलाराम शिव बाबा के साथ कंबाइंड रह करके और हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में निराकार शिव बाबा के श्रीमत पे चल के अपनी मन बुद्धि संस्कार को संपूर्ण पावन सत्व प्रदान ना के जाके शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया, दिल तख्त पे जाके बैठ गया। दिल तख्त माना ये सात एनर्जी, इस दिल तख्त पे जाके बैठ गया और फिर उसने अपने दिल को सच्चा और साफ बना लिया था शिव ब्रह्मा बाबा ने, तो शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। समझ में आई, क्या समझ में आई? देखो 66 में बाबा ने, 66 में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी को ऊपर भेजा, जनवरी की बात है, ऊपर भेजा सूक्ष्म वेतन में, क्यों देख के आओ बच्ची, ऊपर वाले बाबा को देख के आओ, ऊपर वाले बाबा से कह के आना, मिल के आना। तो गुलजार दादी ने आके बताया, बाबा ऊपर वाला बाबा तो बहुत चमकदार है, आप तो इतने चमकदार नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो वहां भी था। सूक्ष्म वतन देखो, ब्रह्मा शिव बाबा के पास, शिव बाबा ने बीच में एक सूक्ष्म वतन क्या है, शिव बाबा ने इसकी अपने दिल की एक्सटेंशन कर दी। बेसिकली क्या है, शिव बाबा जो तो परमधाम में रहने वाला है, पर हमसे कैसे मिले, यहां आने से पहले सूक्ष्म वतन की स्थापना करके आया। सूक्ष्म वतन माना एक ऐसा जोन स्थापन किया, अपना दिल ही स्थापन किया, उस जैसे जैसे बाबा के दिल में, माँ के दिल में बच्चा, बच्चे का कौन सा स्वरूप होता है, जब बच्चा पैदा होता है वह स्वरूप भी होता है, जब बच्चा 6 दिन का वो नाम रखा उस दिन का स्वरूप भी होता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा ऐसे वो मामा करने लगता है वो स्वरूप भी होता है, बच्चा थोड़ा चलने लगता है तो वो स्वरूप भी होता है, और फिर जब उसके पैर में पजेब पहना के, घुंघरू पहना के, मुकुट लगा के माँ उसको कृष्ण के रूप में चलाती है ना, तो उसको वो स्वरूप भी होता है नहीं, इनोसेंट स्वरूप भी होता है। तो माँ के रूप में वही होता है, बच्चा 10 साल 5 साल का हो गया तो भी माँ उसको वही देखती है, वही अपना सत्व प्रधान स्वरूप देखती है ना, है ना, उसका वो वाला सत्व प्रधान स्वरूप देखती है। और कभी कोई गलत काम करता है बच्चा क्या कहते हैं, अपनी चित्र दिखाती है, देखो बेटा तू तो इतना प्यारा है, तू ऐसे कर सकता है, तू तो इतना प्यारा है, तू तो मेरा चांद है, तू तो मेरा सूरज है, है ना, तू तो मेरी आंखों का तारा है ना, उसको याद दिलाती है। जब जब 15 साल का हो गया तो भी उसको बताती है, अपनी गोदी में लेके बताती है बार बार। उसका जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको, फिर 35 साल का तो भी उसको बताती है, 80 साल का माँ हो गई, 60 साल का बच्चा हो गया, तो आज भी मेरी माँ है ना, मेरी माँ तो 84 साल की है ना, मेरी माताजी, तो आज भी मैं जाता हूँ तो माताजी के पास, माताजी मुझे वही अनुभूति कराते, तू ऐसा था, तेरी आंख में ऐसा था, तेरे ऐसे था, ऐसे था, तू ऐसे चलता था, तेरी पैसे जेब में ऐसे ऐसे रखे, तो दादाजी तेरे पैसे भर देते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, वही बातें बताती। मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ प्रैक्टिकली। तो ऐसे बाप के पास हमारे 3 स्वरूप है, अपने दिल में जैसे माँ है ना, हमारा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माँ की अनुभूति कराता है, वो 3 स्वरूप दिखाता है उसका, हमारा हमारा संपूर्ण पावन सत्व प्रधान स्वरूप भी है, ब्राह्मण स्वरूप भी है, फरिश्ता स्वरूप भी है। और बाबा जब हम बाबा के पास रोज जाते हैं सूक्ष्म वतन में, तो बाबा दिखाता है, बच्चे तुझे तो ये तुम्हारा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप है, तू क्या कर रहा है अभी, अटेंशन पूरी नहीं करता है ना, ये तुझे ये बनना है फरिश्ता स्वरूप, तेरा ये फरिश्ता स्वरूप है संपूर्ण, और तेरा ये देवता स्वरूप है, तुझे कहां बनना है, कौन से रास्ते पे जा रहा है, कौन सी गली में घुस गया, हाईवे तो छोड़ दिया तूने, कभी हम गलत छोड़ते हैं ना, गलत रास्ते पे जाते, तो बाबा तुरंत दिखाता है जैसे माँ अपने बच्चे को दिखाती है ना सेम चीज, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ऐसा पुरुषार्थ करके सूक्ष्म वतन माना बाप दादा के दिल तक पे जाके बैठ गया और उसके दिल में आके शिव बाबा के बैठ गया। तो ये हो गया बाप दादा। अब ऐसा ही हमको करना है। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट जो मिली है बाबा से, ये लिफ्ट कहां उतारती है हमको? ये लिफ्ट हमको सीधा जाके कहां उतारती है? सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में उतारती है। सूक्ष्म वतन में नहीं, क्या उतारती है? बटन दबाओ और कहां पहुंच गए? दिव्य बुद्धि रूपी बटन दबाओ और सर दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठो। किसके साथ? पवित्र बुद्धि पवित्र मन के साथ। किसके साथ? पवित्र बुद्धि पवित्र मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसमें लाइट है, अर्थात जिसमें ज्ञान की रोशनी है, जिसकी दिल में ज्ञान बाबा बैठा हुआ है, लाइट हाउस बैठा हुआ है, वो बुद्धि दिल में जिसके वो है एबीसीडी है या ये ज्ञान भरा हुआ है, उसकी दिल में उसका विवेक ठीक कार्य करता है। उसने उसको यूज करके पवित्र अपनी बुद्धि को पवित्र बनाया है ना, शांति रख शांति रूहानी प्रेम अतिंद्र सुख आनंद का अनुभव किया, अब सत्य विवेक उसका ठीक कार्य करता है, एक्यूरेट हो गया, निर्णय शक्ति एकदम कैसी हो गई, एकदम एकदम क्या हो गई, दिव्य हो गई। अब दिव्य बुद्धि रूप का नेत्र काम करने लगता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट काम करने लगती है और चित्त शांत हो जाता है। चित्त शांत माना अब विस्तार को सार में लाने की शक्ति हो गई, विस्तार एकदम सार में आ जाता है। सार माना हम सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, समेट के परम धाम की तरफ अपनी लिफ्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं ना। सहन करना, समाना, सामना करना, सहज करना, सहयोग करना बहुत सहज हो गया, ये इसको कहते चित्त। इसकी बजाय अपोजिट समझो, ये टोटल बुद्धि है, ये दिव्य बुद्धि है, इसको कहते सच्चित आनंद स्वरूप। अगर आपके दिल में सत्य है, सत्य माने सत्य ज्ञान है, बाबा और उसका ज्ञान है, तो आपका चित्त आनंद स्वरूप है, माना आपका चित्त शांत एकाग्र आनंद स्वरूप है। ये तो इसका एक एक स्वरूप अनुभव कर लो आप, ये बुद्धि हमारी दिव्य बुद्धि है। अगर मान लीजिए देह भान आ गया दिल में, मैं तो डॉक्टर सो एंड सो हूं, देह भान आ गया, रोल कॉन्शियस हो गया, या मुझे अपने किसी बात का अभिमान आ गया है ना, तो क्या होगा, एकदम मेरी विवेक कंफ्यूज हो जाएगा, विवेक कंफ्यूज हो गया, निर्णय शक्ति क्या होगी, भ्रष्ट हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, और चित्त क्या हो जाएगा, अब छोटी बात बड़ी बात बन जाएगी, सार विस्तार में चला जाएगा, समेटने की शक्ति खत्म हो जाएगी, निर्णय सहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि करंट तो आई नहीं रही, अब राई भी छोटी सी लगेगी, पहाड़ जैसी लगेगी, और समाना इतनी सी बात होगी मैं 10 लोगों को बताऊंगा, सामना करना ना मेरे को नहीं चाहिए, बाबा इसको हटाओ, इसको हटाओ, हम किनारा करेंगे लोगों से, ब्राह्मण परिवार से भी किनारा करेंगे, क्लास में आना भी पसंद नहीं करेंगे हैं? और क्या होगा, सहयोग करना तो मतलब ही नहीं है, मेरे पास तक शक्ति नहीं है सहयोग करने की, तो क्या हुआ, अब मेरा चित्त अशांत चंचल और बेचैन हो गया, उसमें कैसा हुआ था, शांत एकाग्र आनंदमय हो गया, ठीक है। अब चित्त के आधार पर चिंतन होता है, चित्त के आधार पर चिंतन, अब कैसे विचार चलेंगे, अब जब अगर मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है तो मेरी फाइलें कौन सी खुलेंगी, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान, अब मेरे संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइल खुल गई, कौन सी फाइल खुल गई, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की, पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण स्वरूप की फाइल खुल गई, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान फरिश्ते स्वरूप की फाइल खुल गई, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान देवता स्वरूप की फाइल खुल गई। ब्राह्मण फरिश्ता और देवता में क्या फर्क है, ब्राह्मण माना संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि, अगर मन भी पावन सत्व प्रधान बना दिया तो क्या हो गया, फरिश्ता बन गया, और देवता बनने में क्या हो गया, अगर इन गुणों को मैंने यूज कर लिया, सातों गुणों को रह के मैं कर्मों में ले आया तो मेरे संस्कार परिवर्तन हो गए, उनमें दैवी गुण आ गए तो देवता बन गया। इतना ही फर्क है, ब्राह्मण फरिश्ता और देवता में क्या फर्क है, ब्राह्मण माना मैंने बुद्धि में सिर्फ बाबा और बाबा की ज्ञान रखा है, सत्य को रखा है, मैंने सब कुछ निकाल दिया है, टेलीविजन अखबार मोबाइल व्हाट्सएप सब निकाल दिया, दुनियादारी की बातें करना बंद कर दिया, दुनिया की तरफ देखना बंद कर दिया है ना, काम करता हूं हॉस्पिटल में काम करना, घर में काम करना सब वो करते हैं, किंतु निमित्त मात्र, तोड़ निभाते हैं जोड़ नहीं निभाते हैं, ठीक है। अगर ये स्थिति है तो मैं संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप है मेरा, मैंने अपने मन में हर विचार जो बाबा ने दिया ना, जो मुरली में विचार है उसको मैं क्या करता हूं, उसी में खोया रहता हूं, उसी को मैं उसी को गहराई से सोचता रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ, रिवाइज करता हूँ और चिंतन करता रहता हूँ उसी में। आज बाबा ने एक कहा, आज बाबा ने एक कहा, आज का वरदान था, आज का स्लोगन था, बाबा ने आज एक कहा, बाबा ने कल की उर्दी मुरली थी है ना, कल का बाबा ने क्या क्या बताया था, कैसे कैसे बाबा ने बताया दिव्य बुद्धि कैसे कैसे कार्य करती, कब कार्य करती, कैसे उसमें जंक लग जाता है, कैसे वो रुक जाती है, कैसे फंस जाती है। तो बाबा ने मुझे ऐसी बुद्धि, मुझे ऐसी बुद्धि बनानी है ना, मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रैक्टिकल मुझे बुद्धि बनानी, दिव्य नेत्र मुझे तीसरा नेत्र ऐसे बनाना है। तो ऐसे में सारा दिन मैं वही सोचता रहता हूँ, उसी नेत्र को यूज करता हूँ, उसी बुद्धि को यूज करता हूँ सारा दिन। तो मुझे क्या है, हर संकल्प इसी के आधार पर चलाना है, खाली दिव्य बुद्धि सुनना नहीं है, दिव्य बुद्धि को यूज करना है। दिव्य नेत्र से खाली ये दिव्य नेत्र मिल गया साइड में लगा दो, इन्हीं से देखते रहो, इनसे नहीं देखना अब इससे देखना है। तो प्रैक्टिकली जब मैं करता हूं तो मेरा हर विचार क्या बनता जा रहा है, भावना में परिवर्तन होता जा रहा, शुभ भावना शुभकामना में परिवर्तन होता जा रहा, शुभ भावना उसी भावना में जीने लगता हूं तो मेरी वृत्ति बदल गई। जैसे एक माँ होती है ना छोटे बच्चे को देखती है ना, छोटा बच्चा यहाँ चींटी आती ना तो बोलेगा मम्मी चींटी, चींटी हटाती, चींटी हटाता नहीं है, माँ को बुलाता है ऐसे तो माँ हटाती है, कुछ बात होगी मेंढक आ गया तो माँ उसको पकड़ ले लेता है, मतलब उसको इतना इनोसेंट होता है, उसको डर लगता है, सांप को भी पकड़ लेता है, तो माँ को क्या लगता है मेरा बच्चा तो कितना इनोसेंट है, कितना भोला है, छोटी छोटी बात भी मुझे बताता है ना। तो माँ की भावना कैसी हो जाती है, मेरा बच्चा तो बहुत इनोसेंट है ना, फिर वृत्ति क्या होती है उसकी, दिन रात उसके बारे सोचती रहती है, तो भावना और वाइब्रेशन चेक होते हैं। माँ बच्चा रोता है ना किसको सुनाई नहीं देता, बाप सोता रहता है मस्ती से कराटे कराटे मार के है ना, और माँ को पता लग जाता है, माँ पेट में बच्चे को दर्द हो रहा होता है माँ को पता लग जाता है, बाप को नहीं पता लगता, लगता है पता बाप को, बाप को पता लगता है क्या बच्चे को क्या तकलीफ है, माँ को क्यों पता लग जाता है, क्योंकि भावना सारा टाइम उसी के बारे सोचती है दिन रात, वही भावना इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस और वाइब्रेशन कैच करती है, बच्चे के अंदर थोड़ा सा कुछ होता है माँ कैच कर लेती है ना। तो भावना से वाइब्रेशन बने और वाइब्रेशन फिर टेलीपैथी का काम करते हैं, दुआएं बद्दुआएं जैसे कहते हैं, और फिर वो उसी भावना में जीती है तो उसकी वृत्ति बन जाए, वृत्ति में सर्कल बन गया, उससे दृष्टि बन जाती है, उसको अपना बच्चा हमेशा उसे नजर आता है। कोई माँ दूसरे बच्चे को लेके आती है पकड़ के, देख तुम्हारा तो बच्चा, देख तुम्हारे बच्चे ने मेरे को मारा, अरे मेरा बच्चा कैसे मार सकता है, मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है, तो इसको कैसे मार दिया होगा, तुम जाओ किसी और ने मारा होगा, अपने आप गिर गया होगा, झूठ बोल रहा होगा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। तो वृत्ति से दृष्टि बदली, दृष्टि से वायुमंडल बदल गया, और वही बच्चा जब माँ की गोद में आता है मम्मी, उसके जाने के बाद मम्मी हाँ मैंने मारा था उसने मेरे को गाली दी, मैंने उसको मार दिया था, तो उसको उसमें भी उसकी इनोसेंस नजर आती है, गुस्सा नहीं आता उसको, आ जा बेटा तू तो मेरा लाल, आ जा तू है ना, तो उसको कितना प्यारा है, उसने खुद गाली दी इसलिए मारा ना, गलती इसकी नहीं है, गलती उसी की है, सुना। तो हम ऐसे ही बाबा मारा करता है, अरे बच्चे तुमने ऐसा किया, तुमने तुम्हारी गलती थोड़ी ना, वो तो गिरना ही था ना, गिरते तभी तो आया मैं, नहीं तो मैं कैसे आता, हम तो लग रहा हम गिर गए, हम तो बहुत खराब हो गए, पर बाबा कहते तुम गिरे तो मैं आया ना, नहीं तो कैसे आता ना। तो हाथ हाँ ना, ये तो माया का कसूर है, तुम्हारा क्या कसूर है ना। तो बाबा जैसे माँ नहीं करती, कोई बात नहीं बेटा, उसकी गंदा, वो गंदा लड़का है ना, तो उसको आगे से उसकी से मत मिलाकर है ना, है ना। तो मतलब बाबा कहते माया गंदी है, तुम इसे दूर रहा करो भैया, है ना, ठीक है। तो मतलब बाबा को हमारे अंदर कोई गंदगी नजर नहीं आती है, और फिर उसके असर में हमें इंप्रेशन, माँ को वो इंप्रेशन, वो बिलीफ, अपने बच्चे पे आस्था हो जाती है, संस्कार हो जाते हैं। सेम चीज हमारे साथ होती है। अब हमें मन को परिवर्तन करना है, इस बेहद की जो बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, दिव्य बुद्धि मिली है, इस ज्ञान को, इसमें श्रीमत रूपी जो ज्ञान मुरली मिली हुई है, उससे उसको यूज करते जाओ, अपने संकल्पों को, जो संकल्प मिले बाबा के संकल्प है वो, उनको भावना में परिवर्तन करो, उसी भावना में दिन रात जियो, वृत्ति बदल जाएगी, वृत्ति से दृष्टि बदलेगी, दृष्टि से क्या होगा, वायुमंडल बनेगा, आपका आभा मंडल बनेगा, उस आभा मंडल के असर में जो काम करोगे वो क्या बन जाएगी, आपकी इंप्रेशन बनेंगे, क्या इंप्रेशन बनेगा, बाबा हमेशा मेरे साथ है, आस्था क्या बन जाएगी, बाबा मेरा हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह साथ है, हर समय साथ है, भगवान हमारा साथी है, ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है, ये तो खाली ज्ञाना नहीं है, रियल में फील होगा, कहीं भी आप हो गए बाबा आपकी मदद करने पहुंच जाएगा, बाबा आपको टच कर देगा पहले से, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बच्चे पेट में दर्द हो रहा बच्चे तुम ऐसे कर लो ना, थोड़ा नमक लेके उसमें नींबू डाल के पी लो ना, है ना, ठीक हो जाएगा, थोड़ा दो चम्मच शहद डाल लो उसके अंदर ना, कभी गैस बन जाती है ना पेट में, ये पेट का फार्मूला भी बता रहा हूँ आपको ना, कभी पेट में दर्द हो जाए ना, गैस बन जाए, तो कोई दवाई काम नहीं करती, डाइजन वगैरह कुछ काम नहीं करती। आप आधा गिलास पानी लो, उसमें दो चम्मच शहद डालो और उसमें थोड़ा काला नमक डालो, आधा नींबू डाल के पी लो, है ना, थोड़ी देर गैस ठीक हो जाएगी, है ना, हिचकी भी ठीक हो जाती। तो बाबा ऐसे ऐसे फार्मूला बता देता, कोई बात का भी, बच्चे ऐसे कर लो ना, बच्चे हार्ट को, हार्ट की तकलीफ, दर्द हो रहा है बच्चे, कोई बात नहीं, हार्ट को क्या चाहिए, प्यार चाहिए ना उसको, वो तुमने तो उसको ऐसे बोला था ना उस अपने बेटे को, तुम उसको माफ कर दो, मन से दर्द ठीक हो जाएगा, अच्छा मैंने माफ कर दिया, दर्द ठीक हो गया, है ना, गोली खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो बस ऐसे बाबा आपको तुरंत ऐसे बता देता है, राइट। तो ऐसे बाबा, फिर आस्था और हमारा संस्कार, फिर इसके साथ जीने का आदत पड़ जाती, संस्कार परिवर्तन हो गए, तो ऐसे ही हमारे जो अंदर से परिवर्तन हो जाता है, तो हमारी बुद्धि भी पवित्र हो गई और मन भी क्या बन गया, पवित्र। तो ये सूक्ष्म शरीर हमारा क्या पवित्र बन गया, और संस्कार, संस्कार तो बने ना, संस्कार इसी को संस्कार कहते हैं ना, तो ऐसे नया पवित्र होते होते हमारी ये एकदम सूक्ष्म शरीर लाइट की बन जाती है, यहाँ पे ये लाइट है ना, ज्ञान रूपी लाइट सारे शरीर में, हमारे मन में सारी जगह फैल गई, और अब ये सूक्ष्म शरीर हमारा तैयार है उड़ने के लिए, है ना। वो सूक्ष्म वतन हमने बाबा की आज्ञा का पालन किया ना, वफादार बने, आज्ञाकारी बना, सदा पवित्र निरंतर योगी भाव, सदा पवित्र निरंतर योगी, और वफादारी माना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बस आप पहुंच गए शिव बाबा के पास, आप अपने आप सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओगे, आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा सूक्ष्म वतन क्या है, है ना। आप जैसे मोबाइल, आपको स्विट्जरलैंड देखना हो तो क्या करोगे आप, क्या तरीका है स्विट्जरलैंड देखने का बताओ, मोबाइल खोलो, गूगल बोलो, इंटरनेट ऑन करो, देखो स्विट्जरलैंड सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड खुल जाएगी, और आप देख लो स्विट्जरलैंड, सारे सीन दिखाई देंगे, 15-20 सीन दिखाई दे जाएंगे, तो कितनी देर में देखा, 15 मिनट में सारा स्विट्जरलैंड देख लिया। और रियल में स्विट्जरलैंड जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या करना पड़ेगा, पहले तो पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, वीजा निकालना पड़ेगा, फिर टिकट लेनी पड़ेगी, फिर वहां ठहरने के लिए थोड़े पैसे वैसे होटल बुक कराना पड़ेगा, या सेंटर पर ना, सेंटर है तो सेंटर भी है हमारा वैसे जिनेवा में, है ना, उनसे बात करनी पड़ेगी, किसी की अप्रोच लगानी पड़ेगी, है ना, वहां की बहन से अप्रोच लगानी पड़ेगी ना, तो फिर वहां जाके ठहरने का इंतजाम, या होटल लेना पड़ेगा, और फिर वहां इतने दिन इतना वहां किराया होता है, इतना रहने का चीज है, तो वो क्या है, ये जो हमारी जो जो है ना, जो हमारा जो ना, ये जो पासपोर्ट क्या है, वीजा क्या है, पासपोर्ट है ज्ञान, ये मुरली है ना, वीजा है क्या, वीजा है योग, वीजा है योग, कितना आप इसका अनुभव करते रहते हो, एक पॉइंट का, जो बाबा ने बताया दिव्य ज्ञान स्वरूप, दिव्य बुद्धि रूपी से क्या होता है, दिव्य ज्ञान, ज्ञान स्वरूप बन जाते, और दिव्य याद स्वरूप बन जाते, और दिव्य धारणा स्वरूप बन जाते, और फिर दिव्य सेवाधारी बन जाते, है ना। तो ये जितना आप इस बुद्धि को यूज करोगे, अपने मन को परिवर्तन करके, अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाओगे, तो सूक्ष्म शरीर लाइट का बनता जाएगा, और फिर हमारे अंदर क्या होता जाएगा, दिव्य याद जब रहेगी ना आपकी, याद का स्वरूप बन जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय याद सूक्ष्म वतन का अनुभव होता रहेगा, तो मतलब यहां बैठे बैठे तो उसका आपका याद रूपी वीजा माना करंट आपके अंदर आनी चाहिए। आपके आइडेंटिटी वीजा कब मिलता है, वीजा कब मिलता है, पासपोर्ट तो बन जाता है जब तक आपको वहां से इन्विटेशन लेटर नहीं आए, वहां से जो जहां जा रहे हो ना, वहां का यूएस वाले का जा रहे हो, तो यूएस का इन्विटेशन लेटर आना चाहिए कि आप हमारे पास आके ठहरेंगे, हम अपने आपको इतने दिन हम रहेंगे और इतने दिन फिर चले जाएंगे, या कॉन्फ्रेंस का लेटर आना चाहिए, है ना, तब आपको वीजा मिलता है। तो ये याद ऊपर से बाबा का क्या, बाबा ऊपर से वीजा कहां से आता है, ऊपर से आता है, आ जाओ बच्चे आ जाओ, है ना। तो आपकी याद एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर धारणा, धारणा रूपी टिकट होनी चाहिए, है ना, धारणा रूपी टिकट माना क्या, आपके अंदर सत्यता, निर्भयता, अंत निर्भयता माना एक आंख बुद्धि रूपी आंख परंधाम में बाबा के पास लगी रहे, और मन रूपी आंख कहां लगी रहे, लक्ष्य के ऊपर सुखधाम में अपने देवी देवता स्वरूप पे लगी रहे। तो निर्भयता, अंतर्मुखता, अंदर बुद्धि रहे, बाहर नहीं, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। फिर भेद की वैराग्य वृत्ति आ जाए, अनासक्त वृत्ति आ जाए, उपराम वृत्ति, ये वाली धारणा है ना, इनकी धारणा, एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहे मन बुद्धि, है ना। ये नहीं कि मुझे यहाँ टीवी चाहिए, अभी कुछ बात, कोई बातचीत करने वाला चाहिए, मोबाइल पे उससे बात करूं, अभी उससे बात करूं, बात करनी तो ऊपर बात करो ना, ऊपर बात करनी, ये धारणा होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारे अंदर पैदा होने चाहिए, जब ऐसी होगी ना तो हमारी स्थिति बनेगी। तो ये धारणा रूपी क्या चाहिए, टिकट चाहिए। फिर वहां जाके ठहरना, ठहरेंगे कब, कितनी देर ठहरेंगे ऊपर जाके, कभी धारणा भी जाती है, पर सेवा, दुआएं, दुआएं रूपी खजाना होना चाहिए साथ में, है ना। जितनी सेवा करोगे, जितने बाबा का ज्ञान दोगे लोगों को, किससे, मनसा के द्वारा, खाली बोलने का नहीं, मनसा शक्ति, आपके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो, वायुमंडल इतना पावरफुल हो, आपके पास आते ही लोग बदल जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास आके क्या होता था, एकदम चुप हो जाते थे बच्चे, बाहर वाले भी आते थे वो भी समझते थे, लाइट लाइट लाइट, मारने के ख्याल से आते थे तो भी वो उनके हाथ से, अरे उनको तो गुरुनानक दिखाई देता था, लाइट लाइट दिखाई देती थी, अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाते थे। ऐसी स्थिति, तो ऐसी स्थिति, ऐसी वाली सेवा, है ना। बोल बोल भी ऐसे रूहानी बोल, है ना, उपकार के बोल, रहम दिल के बोल, विश्व कल्याण के बोल बाबा के मुख से निकलते थे, है ना। हर हर एक को लगता बाबा मेरा है, बाहर वाले को भी लगता बाबा मेरा है, दादी दादी थी हमारी, दादी हर एक को लगता दादी मेरी है, बाहर वाला है वो कहे मेरी दादी है, है ना। हर एक बोलता मेरी दादी है, हमें किसी को लगता ही नहीं था। मैं कहता हूं मेरी दादी ने इतना प्यार किया, सुरेंद्र भाई बोलता मेरे को उससे ज्यादा प्यार किया, कमलेश मैन बोलते उससे मेरे से ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा हर एक कहता मुझसे ज्यादा प्यार किया, दादी मेरी थी, है ना। तो वो वाली भावना, फिर ये है सेवा, कर्मों के द्वारा भी सेवा, तीन शक्तियां ना, तो ये तीनों सेवा, जब विश्व सेवा, तो ये जब सेवा हमारी होती ना तो हम उतनी देर ठहर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते, सूक्ष्मता में गए ना, बाबा के पास पहुंचे एक सेकंड में नीचे, टिकट है ही नहीं, अब वहां एक एक दिन किराया कितना है स्विट्जरलैंड का, है ना, 50,000 रुपए, भारत का 50,000 रुपए लगता है एक दिन ठहरने का, होटल में जाकर रहो ना 50,000 रुपए लगता है एक दिन ठहरने का, आपने 50,000 तो टिकट में लग गए, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, तो जाओगे दूसरी फ्लाइट में आके वापस बैठ गया, दूसरी फ्लाइट से भारत में आ गए, देखा हो एयरपोर्ट को देखा ना बस, ना इतनी सेवा, इतना ही घूम के सकते हो ना, तो आपके पैसे तो होने चाहिए 4-5 दिन के, कम से कम 2,00,000 रुपए तो लेके जाओ ना, है ना। तो 2,00,000 लोगे तो घूम घाम के सारे पॉइंट देख के आओगे ना, तो इतनी सेवा की हुई है, तब हम सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं, तब सूक्ष्म वतन की सेवा, ये विजुलाइज करने से कुछ नहीं होता, है ना, होता है क्या, कई लोग बच्चे ना वो बाबा के पास जाते हैं सूक्ष्म वतन में, जाके आए बाबा ने मुझे प्यार किया ऐसे करा के आ जाते हैं, और फिर बाहर आके फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, है ना, बाहर निकलते क्लास से बाहर निकलते गुस्सा करना, एक दूसरे को टेलीफोन पर लग जाते, अरे तुम सूक्ष्म वतन में जाके आए तो तुम्हारा कहाँ गया शांति प्यार आनंद की अनुभूति कहाँ गई, तुम थोड़ी देर तो आनंद में रहो ना, अभी नशे में तो दिखाई देना चाहिए ना आदमी ने, नहीं होना चाहिए, जो चीज खत्म हो जानी चाहिए ना, जो विकार था खत्म हो जाना चाहिए ना, तो ऐसा सूक्ष्म वतनवास है, राइट। तो चार सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में जो दिव्य बुद्धि को यूज करेंगे ना हम, इसके द्वारा अपने मन को परिवर्तन करो। ब्राह्मण शब्द का मतलब ये है, बेहर की बुद्धि को यूज करके, जो बाबा ने हमें बेहर की बुद्धि दी है, सत्य बुद्धि दी है, सत्य, तो इस बुद्धि को यूज करके अपने मन को मनमनाभाव करते जाओ, है ना। ब्राह्मण माना जो इस बेहर की बुद्धि को यूज करके, दिव्य बुद्धि को यूज करके अपने मन के हर विचार को, भावना को, वृत्ति और स्मृति को परिवर्तन करते, है ना, मनमना भाव करते, हर एक में ये बेहद की बुद्धि भर देते, हर संकल्प में, भावना में, वृत्ति स्मृति में, और फिर क्या बन जाते हैं, मध्याजी माना, मध्याजी का मतलब क्या, मध्याजी माना वो देह भान से परे चले जाते हैं, मेल फीमेल के भान से परे, मध्याजी माना फरिश्ता, जो मध्य माना ना मेल है ना फीमेल है, और मेल फीमेल के भान से परे जा करके विष का एक अणु भी नहीं, जिस परिवृत्ति में विष का एक अणु भी नहीं, विष्णु जी, विष्णु मतलब मध्याजी भव हो जाते हैं, है ना। ब्राह्मण माना बेहर की बुद्धि को, बेहर की बुद्धि में दिव्य बुद्धि को यूज करने वाले के द्वारा अपने मन को मनमना भव करके अपनी किसको, है ना, प्रवृत्ति को। तो हमारी प्रवृत्ति क्या है, पहली प्रवृत्ति क्या है, शरीर, है ना, और फिर अपनी अपने घर के, अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं, चाहे सेंटर पे रहते हो, चाहे बाहर रहते हो, चाहे घर में रहते हो, उस प्रवृत्ति में भी सबके साथ क्या रहो, विष के एक अणु भी ना हो हमारे व्यवहार में, इसे कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण शब्द की परिभाषा है। तो जब ऐसी स्थिति होगी, सच्चे ब्राह्मण को क्या है, सच्चा ब्राह्मण सदा ही, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, सदा ही सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठा है, और शिव बाबा बाप दादा उसको पढ़ा रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे, इसको बोलते हैं सच्चा ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब यह सदा ही सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठे हुए, और बाबा उसको अपनी गोद में बिठा के राजयोग पढ़ा रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान सुना रहे हैं, है ना। बाप के रूप में बाबा क्या देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो बाबा सूक्ष्म वतन में आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, और सतगुरु के रूप में त्रिलोकीनाथ बना देता है। बंधु के रूप में सारा सारा बोझ आपका ले लेता है, बच्चे तुम्हारा लौकिक अलौकिक बोझ है जो मुझे दे दो, बड़ा भाई है ना। सखा के रूप में कहता है तुम्हारी जो गलतियां होंगी तुमसे वो मुझे 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 सब बता दो, दोस्त को सब बता देते हैं ना। सखा को साजन के रूप में दैवी गुणों से सजा देता है, सज्जन के रूप में तुम्हारे ऑपरेशन करता रहता है, काम क्रोध लोभ लोभ निकालता रहता है, कीड़े निकालता रहता है मन में से, बुद्धि में से ना। और बच्चे के रूप में अपना तन मन धन सब बाबा को, ओके राइट, समझ में आई आपको। जैसे गुहिया है थोड़ा सा, पर दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में बाबा और बाबा की याद भरी हुई है, ठीक है। विवेक ईश्वरीय है, निर्णय शक्ति दिव्य है, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है, और जैसा चित्त वैसा चिंतन, उसके द्वारा फिर हमारी मेमोरी की फाइल्स खुलती जाती है, पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण स्वरिष्ठता देवता स्वरूप की फाइल, उससे फिर रूहानी वृत्ति, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि, रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल, फिर उससे शुभकामना से पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली वाइब्रेशन, और उससे फिर वाइब्रेशन से पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प का निर्माण होता है, उससे हमारे हाइपोथैलेमस में स्ट्रेस रिस्पॉन्स खत्म हो जाती है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ना जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्सेशन सिस्टम शुरू हो जाता है, और जागृति का सिस्टम एक हमारे अंदर लगा हुआ है हाइपोथैलेमस, वो जागृत हो जाता है। नॉर्मली हमारी 10 अरब न्यूरॉन्स ही एक्टिव रहते हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, 10 अरब न्यूरॉन्स ही एक्टिव रहते हैं, 10% ही एक्टिव रहते हैं, 90% विकारों के कारण सुषुप्त हो गए, सो गए। तो जब ऐसी जागृत अवस्था आती है तो वो सातों एनर्जी उन सातों 100 अरब न्यूरॉन्स में फैल जाती है, ये ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद, तो 100 अरब न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगते हैं। पहले 10 अरब हुए, फिर 15 अरब हुए, 20 अरब हुए, 25 अरब हुए। 20 अरब हो जाए तो क्या हो जाएगा, आप जीनियस बन जाओगे, आपको दिखाई देने लगेगा सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, अभी क्या होने वाला, इधर क्या होने वाला। फिर 30 अरब हो जाएंगे, फिर 35 अरब हो जाएंगे, फिर 40 अरब। फरिश्ता किसे कहते हैं, इसको 100 के 100 अरब एक्टिव हो। पाप के कारण वो 90 अरब सो गए हैं, पाप किए ना जो अंदर भरे ना सो गए। जैसे जैसे पाप विनाश होते जाएंगे वो 10 अरब और फ्रेश 20 अरब, 30 अरब, 40 अरब, 50 अरब। फरिश्ता किसे कहेंगे, संपूर्ण फरिश्ता किसे कहेंगे, 100 के 100 अरब जागृत और रिलैक्स्ड, ट्रांसपेरेंट, है ना। जब ऐसी पावर लग जाएगी ना ये वाली पूरे के पूरे, तो सूक्ष्म वतन ऐसे जाएंगे, है ना। तो चलते फिरते उठते बैठते सूक्ष्म वतन वासी रहेंगे, है ना। और फिर ऐसे देवता, देवताओं के भी 100 अरब ऐसे के एक्टिव रहते हैं, ठीक है, क्लियर हुए। जितना इस ज्ञान योग का प्रयोग करते जाओगे उससे फिर क्या आंखों में क्या होगा, आंखों में दिखाई देगा, सामने वाले को क्या दिखाई देगा, अगली मुरली, नेक्स्ट संडे की मुरली है ये, उसको दिखाई देगा, सत्यु के सीन दिखाई देंगे, आपको भी अपने दिखाई देंगे, उसको भी दिखाई देगा, अपना सत्य स्वरूप दिखाई देगा, आपकी आंखों में देखेगा, दिखाई देगा, दूरदर्शन का काम करेंगे आपके नेत्र, है ना, तो उसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पर वो तब आप ऐसी स्थिति बन जाने पर, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने दिखाई देता था ना, अभी बाप दादा आते थे ना, बाप दादा के सामने जाओ इतने वंडरफुल अनुभव होते थे, दीदी को पता होगा, मेरे को तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव बाबा के सामने होते थे, वो तो कभी बाद में बात करेंगे, है ना। तो मतलब ऐसा ऐसा सुंदर अनुभव करेंगे, ओके। काम बहुत बाकी है, लगन लगाओ उसके लिए, रोज कम से कम 2 अव्यक्त मुरली पढ़ो, 1 साकार मुरली, साकार मुरली कम से कम 100 बार रिवाइज करो, है ना। 100 बार माना 1 घंटे में 6 बार, 1 घंटे में 6 बार माना 10-10 मिनट में मुरली के ना, वो मुरली निकाली अपने आप मन में बजती रहेगी, हर 10 मिनट में मुरली बजनी, बाबा और मुरली याद आने चाहिए। 100 बार याद करोगे ना, बाबा के पॉइंट याद आएंगे, बाबा और बाबा की मुरली, तो 100 की माला में आ जाओगे। जो श्वासोश्वास जिनको बाबा और बाबा की मुरली याद आती है वो एक अष्टतन बनते हैं, दादियां हमारी ऐसी हैं, जो 100 बार करेंगे 108 की माला में आ जाएंगे। जो कम से कम दिन में 8 बार करेंगे, हर 2 घंटे में बाबा और बाबा की मुरली को रिवाइज करेंगे, रिवाइज माने सारी मुरली नहीं, एक एक लाइन भी याद आए ना तो भी बहुत अच्छी बात है, उसका अनुभव करेंगे, वो 16,000 में आएंगे। और जो रोज 7 बजे आके मुरली सुनेंगे क्लास में आके, वो 9 लाख में आएंगे। जो मुरली में 1 घंटा लेट आएंगे, 8 बजे आएंगे, बच्चों को स्कूल भेज के आएंगे, वो एक जन्म मिस करेंगे, श्री कृष्ण को नहीं देख पाएंगे, जो 9 बजे आएंगे खाना खा के आएंगे वो 2 जन्म लेट, जो कपड़े धो के आएंगे है ना 10 बजे है ना वो 3 जन्म लेट, जो 11 बजे आएंगे कुछ वो भाई आते ना काम वाली उसको भी काम पूरा करा के आएंगे वो फिर 4 जन्म लेट, और जो शाम को ही पहुंचेंगे शाम को 5 बजे आएंगे है ना, तो आप एडवांस में जाके सत्युग बनाएंगे है ना ओके ठीक है, जो शाम को आते हैं वो 12 जन्म लेट हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि सारा काम कर ले खा पी के सब कुछ करके फिर शाम को भगवान याद आया ना, सेंटर याद आया, इसलिए सबसे पहले सेंटर हमारा नियम है, जब से बाबा को पहचाना हमने कभी मुरली मिस नहीं की, और मुरली पूरी सुनने के पहले कभी खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, मुरली जेब में रहती है, वो तो हम 5 बजे पढ़ते हैं, मैं सुबह मेरी क्लास में आने तक 4 बार मुरली हो चुकी होती है ना, 5वीं बार क्लास में आकर सुनता हूँ, तो ऐसा नियम बनाओ ठीक है। तो अगर बापा मुरलीधर के साथ आना है तो क्या करो, ये मुरली को बजाते रहो सारा दिन है ना, मुरली बजती रहनी चाहिए मन में, हमेशा बजती रहनी ठीक है, तो यही साधन है सूक्ष्म वतनवासी बनने का, 5 विकारों पर डांस करने का, 5 विकार रूपी सांप पर डांस करने का राइट। तो मन बुद्धि को पावन सत्व प्रधान बना के, सूक्ष्म शरीर को पावन सत्व बना के, और चारों चीजें ज्ञान योग धारणा, ज्ञान रूपी पासपोर्ट, याद रूपी वीजा, और धारणा रूपी टिकट जाने आने की, और सेवा रूपी खजाना वहां रहने के लिए, घूमने के लिए है ना, खाने पीने के लिए, वो तब आप सूक्ष्म वतन में जा सकोगे, नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला ठीक है। जबरदस्ती करके चाहे कॉफी पी के भी अचार खा के भी ऊपर सूक्ष्म वतन घुमाओ, उससे वो विक्रम विनाश नहीं होंगे ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म वतन के पास में ही परम धाम है, सूक्ष्म वतन से फिर परम धाम जाके विक्रम विनाश होंगे ठीक है, सूक्ष्म वतन में विक्रम विनाश नहीं होते परम धाम, किंतु पास में ना परम धाम, तो तुरंत वहां से बाबा खुद ही धक्का लगा देता, जाओ बच्चे ऊपर जाओ, चलो विक्रम विनाश करके आ जाओ, फिर मेरी गोदी में वापस आ जाना। तो साकारी आकारी निराकारी, निराकारी आकारी साकारी अनुभव होता है। ओम